أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اجعلنا تو احکام حجاب ابھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. والیوم نمبر 7 معرف القرآن، پیج نمبر 209 کے اوپر ہیں ہم ابھی. پیج نمبر 209 سے کنٹینیو کرتے ہیں. نزول حجاب کی تاریخ، یہ اس کا ٹائٹل ہے، ٹاپک ہے. اس سے پہلے جو ہم نے احکام حجاب کے اندر پڑھا ہے، تو اس کی مختصر سمری یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حجاب کے احکام نازل فرمائے، تو مقصد ان کا ہے بے حیائی کے راستوں کو روکنا. ٹھیک ہے، بے حیائی کے راستوں کو روکنا، انسداد راستوں کو روکنے کو کہتے ہیں، کیونکہ راستوں کے اوپر دروازے بنائے جاتے ہیں ان راستوں کو بند کرنے کے لیے. تو انسداد کا مطلب ہوتا ہے دروازے بند کرنا، تو بے حیائی اور فحش کے دروازوں کو بند کرنا. پچھلی امتوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو مطلقاً گناہ ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم کیا کہ جی یعنی شراب نہ پیو یا زنا نہ کرو، تو یہ مطلقاً گناہ کہلائے گا، جس کی کہ حرمت اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست بلا واسطہ خطاب سے ثابت ہو گئی، تو یہ کہلائے گا مطلقاً گناہ. اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس کو کہ اسباب گناہ کہتے ہیں، وہی یعنی کہ راستے جو گناہ تک پہنچاتے ہیں. تو پچھلی امتوں کے اندر جو مطلقاً گناہ ہوتے تھے، تو صرف ان کو حرام قرار دیا گیا تھا اور ان کے اسباب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر گناہوں کے اسباب کو بھی ان کے قرب یا بعد کے حساب سے حرام قرار دیا گیا، یا اس کے حساب سے ان کے اوپر شرعی احکام لگائے گئے. تو اس کے تحت پھر ہم نے اسباب قریبہ اور اسباب بعیدہ کی تفصیل پڑھی تھی معرف القرآن سے. تو قریبہ اسباب کون سے تھے؟ یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جو کہ ضرور بالضرور گناہ تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اتنا زیادہ احتمال ہوتا ہے، یعنی جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا پروبیبلٹی، تو ان کو کرنے سے گناہ کو، جو مطلقاً گناہ ہے، جو اصلاً گناہ ہے، اس کو کرنے کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، لائک آلموسٹ 100% ہوتی ہے، یا چلے 95% ہوتی ہے، 90% ہوتی ہے، 80% ہوتی ہے. یہ پرسنٹیج تو ہم اپنی طرف سے اس بات سمجھانے کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن بہت قرب ہوتا ہے ان کو گناہ تک پہنچانے میں. تو اس کی مثالیں بھی پڑھی تھیں، اور حضرت نے اس کے لیے شرک والا جو گناہ ہے اس کی بھی مثالیں بتائی تھیں، جیسے تصویر سازی جو ہے وہ بھی شرک تک لے جانے کا ایک سبب بنتی ہے، اور سبب قریبہ ہے بت سازی. ٹھیک ہے، کوئی بت بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو بس ایسے اپنے گھر میں اس کو سجانے کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن بت سازی جو ہے وہ یعنی اتنا زیادہ اس کو مشابہت ہے شرک کے ساتھ کہ بت سازی کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حرام قرار دیا گیا. اسی طرح شراب کی مثال پڑھی، اور آخر میں زنا کی مثال پڑھی ہے کہ زنا کے بھی اسباب قریبہ کیا ہو سکتے ہیں. قریبہ کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے اس کو بعیدہ کہتے ہیں، یعنی یہ دور ہے، اس کی پروبیبلٹی کم ہے گناہ تک پہنچانے کی، لیکن پھر بھی اتنی زیادہ ہے کہ بگ چانس ہے، یعنی 50% سے زیادہ چانس ہے کہ یہ گناہ تک پہنچا دیں گے. تو ان کو شریعت کے اندر مکروہ تحریمی، جس کو دوسرے لفظ میں ناجائز کہا جاتا ہے، قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اسباب بعیدہ تھے. اس کی بھی مثالیں جو ہے وہ شراب، یعنی کسی ایسے شخص کو شراب بیچنا کہ سوری کسی ایسے شخص کو انگور بیچنا کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جا کے شراب بنائے گا، اس نے کہا نہیں ہے لیکن معلوم ہے. تو اس طرح کی مثالیں پڑھی تھیں، اور زنا کی بھی ٹاپک میں اسی طرح کی مثال پڑھی تھی کہ اس کا بھی اسباب بعیدہ کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ اسباب ابعدیہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ دور. ٹھیک ہے، تو جو اسباب ابعدیہ ہوتے ہیں ان کو شریعت نے مباح قرار دیا کہ یہ جائز ہیں، جیسے کہ نارمل انگور کی فروخت کرنا، ठीक है, उसी तरीके से और भी मिसालें पढ़ी थी। तो अब ये क्यों मुबाह करार दिए गए? क्योंकि अगर इनको भी हराम करार दिया जाता, इनकी भी ममानियत आती, तो फिर जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाती और दीन के अंदर हरज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक बहुत ही यानी बेसिक लेवल की बात करी थी, जो कि यानी हम अगर उस बात को ना समझ रहे हो तो फिर शैतान बड़ी आसानी से आकर के उसको एक्सप्लॉइट करता है। और वो बात क्या थी कि भाई ये जो दीन के अंदर हरज नहीं है, ये दीन में कोई तकलीफ नहीं है, दीन तो बड़ा आसान है। ठीक है, इस जुमले को शैतान बड़ी आसानी से एक्सप्लॉइट करता है, इसलिए कि हर शख्स ही जो है वो उसके नजदीक आसानी और तकलीफ की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। हर शख्स की आसानी एक लेवल की होती है और तकलीफ एक अलग लेवल की होती है। तो इस वजह से शरीयत जो है उसने ये मामला डेफिनेशन का कि क्या चीज आसान है, क्या चीज मुश्किल है, क्या हरज है और क्या हरज नहीं है, ये जो डेफिनेशन है ये शरीयत ने हर इंसान के अपने ऊपर नहीं छोड़ी। ठीक है, वरना तो फिर हर इंसान जो है अपने नफ्स के मुताबिक फैसले करता और उसका नफ्स जो है वो तो पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता। इंसान का नफ्स जो उसका अंदरूनी दुश्मन है, उसके अंदर अंदर ही मौजूद है, जो कि शैतान के साथ साजबाज करके सिर्फ जो है वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है और उसको इस इंसान की फलाह और बहबूद से कोई गर्ज नहीं होती। तो वो तो अपने हिसाब से कभी भी जो है वो शरीयत की पाबंदियों को कबूल नहीं करेगा, वो उसके लिए तो हर पाबंदी ही मुश्किल होगी, हर पाबंदी ही हर्ज होगा। इस वजह से शरीयत ने हर इंसान की जाती डिसीशन के ऊपर उसको नहीं छोड़ा, बल्कि ये फैसले जो है वो शरीयत ने जो उलमाए कराम अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बनाए, ठीक है, ये उलमा जो है ये खुद से नहीं बन जाते, ये अल्लाह की तौफीक से बनते हैं। अल्लाह ताला ने ये कैटेगरी रखी है इंसानों के अंदर कि जो कि दीन का तफसीली उलूम हासिल करें और वो फिर अवामुन नास को दीन समझाएं, दीन पढ़ाएं। ठीक है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक क्रिएटेड कैटेगरी है इंसानों के अंदर जिसको उलमाए कराम कहते हैं। तो इसकी जो तारीफ है कि कौन सी चीज शरीयत में हर्ज कहलाएगी और कौन सी चीज हर्ज नहीं कहलाएगी, ये तारीफ अल्लाह ताला ने उलमाए कराम की जिम्मेदारी लगाई है। ठीक है, ये डिफाइन करना। तो इस वजह से उलमा का जो रोल है वो बहुत कलीदी रोल होता है दीन के अंदर, कि अगर उलमा को हम यानी उनसे पूछ करके चले, जैसे कि हुक्म भी है, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, कुरान का हुक्म है, तो इस हुक्म पे हम अमल करें, उलमा से पूछ करके दीन को समझें कि जी मेरे दीन के लिए कौन सी चीज जो है वो हरज बन रही है और कौन सी चीज जो है वो हरज नहीं बन रही, अगरचे कि मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी वो हरज की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो अगर हम उलमा से पूछेंगे तो हम जो है वो अपनी नफ्स परस्ती के शिकार नहीं होंगे, ठीक है, हम नफ्स परस्ती के मुजरम नहीं बनेंगे। और अगर हम उलमा से नहीं पूछेंगे और खुद से डिफाइन करेंगे तो फिर हम नफ्स परस्ती के शिकार हो जाएंगे, और नफ्स परस्ती जो है वो दरअसल शैतान ही की बात मानने की मुतरादिफ है, इसलिए कि नफ्स जो है वो शैतान नफ्स को जो है वो मुस्तकिल अपने वसावेस और अपने आइडियाज जो है वो फीड करता रहता है, और नफ्स परस्ती हराम है। ठीक है, जिस तरीके से सुअर खाना हराम है ना, जिस तरीके से यानी बुत को सजदा करना हराम है, उसी तरीके से नफ्स परस्ती भी शरीयत के अंदर हराम है। ठीक है, लेकिन ये वाली वाला जो हराम है ये बड़ा छुपा हुआ हराम होता है, क्योंकि ये हमें नजर नहीं आ रहा होता, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम ये काम जो कर रहे हैं ये नफ्स परस्ती की वजह से कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रही होती है बात। इस वजह से उलमा से जब ताल्लुक रहता है और एक इस्लाही ताल्लुक भी जिसको कहते हैं, तब जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये जो आप काम कर रहे हैं ये तो शरीयत के मुताबिक नहीं है, ये तो असल मकसूद नहीं है दीन का, ये तो आप लगता है नफ्स परस्ती की वजह से कर रहे हैं, तब हमें मालूम होता है कि अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये तो नफ्स परस्ती चल रही है। और इसी बात को शैतान समझता है कि इस दीन पर चलने के लिए उलमा से पूछे बगैर चारा नहीं है, तो इसके वजह से चूंकि वो चाहता है कि जी हम तो दीन पे ना चलें, तो उसका हल उसके पास क्या है, उसका हल उसके पास यही है, यानी इस अपने अल्टीरियर मोटिव को अचीव करने का उसके पास क्या हल है कि इन लोगों को उलमा से बदजन कर दो, उलमा से बदगुमान कर दो, या इन लोगों को ऐसे यानी ऐसे इनकी जहन में तसव्वुर पैदा कर दो कि इनको उलमा की जरूरत नहीं है, इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़नी है, ये बड़े इंटेलेक्चुअल बन चुके हैं, बड़े जहीन बन चुके हैं, और अब इनको उलमा से पूछने की जरूरत ही नहीं रही। बेशक उलमा है, बड़े अच्छे लोग हैं जी, बड़े जी उनको हम उनको मौली साहब कहते, मौलवी साहब कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं, और फलाना कहते हैं, फलाना कहते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, मस्जिद टाइम पे खोलते हैं और मस्जिद में नमाज टाइम पे पढ़ाते हैं, और जनाजा होता है तो टाइम पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और जब दुआ करवानी होती है तो भी टाइम पर आ जाते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, हमारा उनसे ये पूछने पाछने का रिश्ता नहीं होने की जरूरत है। तो उलमा को हमने अगर अहमियत दी भी ना, तो उनको एक मखसूस यानी कैटेगरी में बंद कर दिया, जिस कैटेगरी के साथ पूछने का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसलिए कि हम खुद ही जो है वो अपने आप को आलिम समझना शुरू हो गए, ठीक है। तो उलमा से बदगुमानी भी जो है वो हमारे लिए जहर कातिल है, और उलमा से अपने आप को मुस्तगनी समझना, बेशक आप बदगुमान ना हो लेकिन मुस्तगनी समझना, ये भी जो है वो हमारे दीन के लिए जहर कातिल है। तो इन सारी चीजों के बाद हम नुज़ूल हिजाब की तारीफ भी आपके सामने पढ़ेंगे, ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो और आपके लिए इस मसले को समझना और अप्रिशिएट करना और भी ज्यादा आसान हो जाए। पेज नंबर 209 पे देखते हैं कि औरतों और मर्दों में बेमहाबा, बेमहाबा का मतलब क्या होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड या बिल्कुल ही यानी बेफिक्री के साथ जो इख्तलात होता है, इख्तलात मीनिंग मिक्स मिक्स गैदरिंग्स, आपस में मिलजुल करके काम करना, मिलजुल करके उठना बैठना, चाय की महफिल पे मिलके बैठना वगैरह, ये सब इख्तलात कहलाता है। तो बेमहाबा इख्तलात तो दुनिया की पूरी तारीख में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी जमाने में दुरुस्त नहीं समझा गया, और सिर्फ अहले शराए ही नहीं, दुनिया के आम शरीफ खानदानों में ऐसे इख्तलात को रवा नहीं रखा गया, ठीक है, यानी बहुत अजीब बात अगर हम गौर करें तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। कह रहे हैं कि सिर्फ जो शरीयत को फॉलो करने वाले लोग होते हैं उन्हीं के दरमियान नहीं, बल्कि इवन जो जो आम लोग होते हैं, जैसे कि जिनकी फितरत मस्त नहीं हुई होती, ये आम लोग कहलाते हैं, तो आम शरीफ घराने को कहा जाता है, इज्जत वाले जो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, ठीक है, उनमें भी ऐसे अख्तरात को बर्दाश्त नहीं किया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सफरे मदियन के वक्त जिन औरतों का अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए अलग रोके हुए खड़े होने का जिक्र है, इसकी वजह यही बतलाई गई है कि इन औरतों ने मर्दों के हुजूम में घुसना पसंद ना किया, ठीक है, मर्दों के हुजूम में घुस नहीं, जरा वहां पे भी अपनी मसल्स राइट मसल्स अपना चलाती हैं, जरा वहां पे घुस करके जो है वो अपना काम, जैसे कि माशाल्लाह बहुत से खवातीन जो हैं वो समझती हैं कि जी लड़ झड़ करके मर्दों से ना अपना काम निकलवाएंगी, और हद तक वो जुबानी लड़ाई से आगे जो है वो बात फिजिकल लड़ाई तक भी पहुंच जाती है। तो इन्होंने ऐसा पसंद नहीं किया था, सबके बाद बचे हुए पानी पर कनात करी थी, और यही इनका रोजाना का मामूल था कि वो जब चले जाते थे तो फिर जो बचा खुचा ऊपर रह जाता था उससे अपनी बकरियों को पिलाती थी। तो उस दिन भी ऐसी खड़ी हुई थी, तो उस दिन तो मूसा अलैहिस्सलाम आ गए ना, तो फिर उसके बाद उनका मसला हल हुआ। हजरत ज़ैनब बिनते हजश जहश रजी अल्लाह ताला अन, जिनके निकाह के वक्त पहली आयत हिजाब नाजिल हुई है, इसके नाजिल होने से पहले भी जामे तिरमिजी की रिवायत में इनके घर में नशिस्त की ये सूरत बयान की गई है, ठीक है, सही तिरमिजी के अंदर ये हदीस मौजूद है कि जिसके अल्फाज हैं कि वहिया मुवल्लियतु वजहहा इलल हाइती, यानी वो अपना रुख दरवाजे दीवार की तरफ फेरे हुए बैठी थी, ठीक है, यानी पर्दे की आयात नाजिल नहीं हुई थी उस वक्त, हिजाब की आयात नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही वो कैसे बैठी हुई थी, वो मर्दों की तरफ रुख करके नहीं बैठी हुई थी, ठीक है, यानी हुक्म हिजाब से पहले भी जो शरीफ लोग होते थे, क्योंकि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो कुरैश से ताल्लुक रखती थी, और कुरैश जो है वो शुरफा का 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 खानदान था, ठीक है, बेशक बुत परस्त थे लेकिन मुआशरे के अंदर इनकी इज्जत थी, इज्जत वाले लोग थे, शरीफ लोग थे, शरीफ का मतलब होता है इज्जत वाला, ठीक है, भोले भाला और बेवकूफ ये हम शरीफ का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये शरीफ का मतलब नहीं होता, शरीफ का मतलब होता है की वजह से ना ये म्यूट हो गया था। शुरू से तो अनम्यूटेड ही था ना मैं इस क्लास में भी। ठीक है, अब तो आवाज आ रही। जी ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तो कुरान करीम में जिस जाहिलियत उला और इसमें औरतों के, हाँ ये हो गया। अच्छा, कहते हैं कि अरब की पूरी तारीख इसकी शाहिद है। हिंदुस्तान में हिंदू, बुद्ध मत और दूसरे मुशरिकाना मजाहिब वालों में औरतों मर्दों के दरमियान बेमहाबा इख्तलाफ गवारा नहीं था। ठीक है, हमें याद है बचपन में जो हमारे यहाँ हिंदू मासियां आती थी, हमारे यहाँ तो खैर अलहमदुल्ला नहीं आती थी, किसी किसी रिश्तेदार के आती थी, तो वो भी जो है ना वो इस तरीके से एक्ट करती थी जैसे कि बड़ा उनको हया का ख्याल है। बहुत जो है वो अपने चेहरों को छुपा करके आती थी, और यानी एक अजीब जो है वो, हम बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त का हमें याद है। अच्छा जरा होल्ड किएगा। ये यानी दूसरे मुशरिकाना मजाहिब वालों में भी औरतों मर्दों के दरमियान बेमहाबा इख्तलात गवारा नहीं था। ठीक है, तो अब ये सारा फिनोमेना कहाँ से आ गया आज के दौर के अंदर? फरमाते हैं कि ये मर्दों के दोष बदोश यानी बराबर कंधे से कंधा मिला के जिसको कहते हैं काम करने के दावे, बाजारों और सड़कों पर परेड करने। ठीक है ना, एक मुल्क के अंदर जरा आजादी आई तो पहला काम क्या किया खवातीन ने, मैराथन, सड़कों के ऊपर मैराथन करी। राइट, तो मर्द जन के ये सड़कों पर परेड करने और तालीम से लेकर हर शोबे जिंदगी में मर्द व जन के बेतकल्लुफ इख्तलात, जियाफतों, ठीक है यानी जो पार्टीज होती हैं, और क्लबों में बेतकल्लुफ मुलाकातों का सिलसिला, बेतकल्लुफ मुलाकातों का सिलसिला सिर्फ यूरोपियन अकवाम की बेहयाई और फहाशी की पैदावार है, जिसमें ये अकवाम भी अपने माजी से हट जाने के बाद मुब्तला हुई है। इवन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी ये पहले ऐसा मामला नहीं था, कदीम जमाने में इनकी भी ये सूरत नहीं थी। अल्लाह ने जिस तरह औरत की जिस्मानी तख्लीक को मर्दों से मुमताज रखा है, इसी तरह उनकी तबीयतों में एक फितरी हया का जौहर भी रखा है जो उनको फितरी तौर पर आम मर्दों से अलग थलग रहने और तसत्तुर पर आमादा करती है। ठीक है, तो इवन ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी इसका देखें आज भी एक मुजाहरा नजर आता है। ये औरतों के अंदर जो अल्लाह ताला ने फितरी तसत्तुर रखा है ना, तो भाई इन कंट्रीज के अंदर तो ये मॉडर्न फिनोमेना जो आया है कि औरत मर्द बराबर हैं और इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई कोई फर्क नहीं है, और बिल्कुल ही जो है वो एक यानी हिजाब वगैरह का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। देखें आज के दौर के अंदर भी, इवन इन कंट्रीज के अंदर भी इसके दो कम अज कम नमूने हमें नजर आते हैं। कोई बता सकता है कि दो नमूने इन कंट्रीज के अंदर भी इसके क्या नजर आते हैं, जहां पर कि बिल्कुल ही तमीज खत्म हो गई है? ठीक है, वहां पर भी ये दो नमूने आज भी नजर आते हैं, किसी के जहन में अगर आए तो प्लीज बताएं, इन नॉन मुस्लिम वेस्टर्न वॉशरूम के अंदर। जी है, तो ये क्लास ही ना, तो उसमें इंटरेक्शन भी हो सकती है। अलबत्ता म्यूट करके और सिर्फ टाइप करके जवाब दें ताकि एक ऑर्डर रहे। नंस, नंस को तो का तो मिसाल जो है हिजाब यानी सर ढकने के उसमें दी जाती है, यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं फर्क यानी उन नंस तो इनके रिलीजियस सिस्टम है ना, तो हम तो यहाँ इनके आम मुआशरे की बात कर रहे हैं, वो नंस तो एक्सेप्शन है, आम मुआशरा नहीं है इनका। आम मुआशरे में इसकी दो मिसालें नजर आती हैं, एक बड़ी मिसाल तो इनके स्पोर्ट्स में नजर आती है। ठीक है, कि स्पोर्ट्स के अंदर ना इन्होंने अभी भी औरतों की टीमें अलग और मर्दों की टीमें अलग, औरतों के कॉम्पिटिशन अलग, मर्दों के कॉम्पिटिशन अलग, हर स्पोर्ट के अंदर ऐसा ही है। ठीक है, कोई भी शायद ऐसा स्पोर्ट नहीं है कि जिसमें दोनों को जो है वो एक साथ इन्होंने रखा हुआ। ठीक है, ओके, तो उसकी वजह क्या, भाई फर्क है ना, चाहे फिजिकल फर्क मानते हो लेकिन फर्क तो है। और दूसरा जो कि और भी ज्यादा यानी जिसका ताल्लुक यानी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि दिमागी एक बात है, एक फिक्री बात है। ठीक है, वो क्या है कि इवन इनके कंट्रीज के अंदर भी, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, ठीक है, इनके अंदर आज भी जो रेस्ट रूम्स होते हैं, वॉशरूम्स जो होते हैं, ये दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है ना, जहां चले जाएं आप, बड़े दूर दराज इलाके के अंदर आप हाईवे के ऊपर सफर कर रहे हो, आबादी से जो है वो बहुत दूर उन्होंने कोई ऐसा रेस्ट एरिया बनाया हुआ हो, तो वहां पर भी जो वॉशरूम्स बनाएंगे तो औरतों के लिए अलग बनाएंगे, मर्दों के लिए अलग बनाएंगे, ठीक है, इल्ला ये कि वो एक ऐसा सिर्फ एक सिंगल रूम वाला टॉयलेट हो कि जिसके अंदर बाहर, यानी जिसके अंदर एक ही शख्स दाखिल हो सकता हो एक वक्त में। लेकिन अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी ऐसा है कि जी अंदर जो टॉयलेट्स अंदर हैं और बीच में एक सेंट्रल एरिया है जहां पर के यानी उनके सिंक्स और यानी हाथ मुंह धोने के इलाके अलग हों, तो ऐसी जगहों के ऊपर मर्दों के लिए अलग बनाएंगे और औरतों के लिए अलग बनाएंगे। स्कूल्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, वर्क एरियाज के अंदर भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्यों फर्क है आखिर, जब सब कुछ ही बराबर है, सब कुछ ही जो है वो खुला हुआ है, तो फिर फर्क क्यों रखा हुआ है दोनों के दरमियान? तो एक है अल्लाह ताला ने फितरत में रखी है कि जिससे ये आज भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये फितरी और तबीई हया का पर्दा औरतों मर्दों के दरमियान इब्तिदाए आफरीन से हायल रहा है। इब्तिदाए इस्लाम में भी बाहिमी पर्दे की यही नौइयत थी। पर्दा निस्वा की ये खास नौइयत को औरतों का असल मुकाम, पर्दा निस्वा की ये खास नौइयत के औरतों का असल मुकाम घर की चार दीवारी हो, और जब किसी शरी जरूरत से बाहर निकलना हो तो पूरे बदन को छुपाकर निकलें, ये हिजरत मदीना के बाद 5 हिजरी में जारी हुआ है, ठीक है। तो हिजाब के साथ बाहर निकलने की जो पाबंदी है ये 5वीं हिजरी में, जिसकी तफसील यह है कि बेतफाक उलमाए उम्मत इस पर्दे के मुतालिक पहली आयत वो है जो ऊपर मजकूर हुई है, ला तदखुलू बुयूत नबी, यानी चूंकि ये सूरह अहजाब की तफसीर के तहत हजरत ने ये अहकाम हिजाब लिखे हैं ना, तो वो आयात तो हमने अलग से नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ रेफर किया है कि जिसके अंदर ला तदखुलू बुयूत नबी वाली आयत है, और ये आयत हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह और हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के वक्त नाजिल हुई है, जब आप निकाह में आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में आपके घर के अंदर दाखिल हुई। तो घर तो इनका अपना ही था, ठीक है, अज़वाज मुतहरात के अपने घर होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घरों के अंदर जाते थे, ठीक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक घर नहीं था जिसके अंदर जब बीवी जब कोई औरत निकाह में आती थी तो अब जो है वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर में आकर के रहना शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हर बीवी का अलग घर होता था। इस निकाह की तारीख में हाफिज इब्ने हजर ने इसाबा में और इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने इस्तिआ में दो कौल नकल किए हैं। तो ये तो खैर है कि ये तीसरी हिजरी के अंदर ये मामला हुआ कि 5वीं हिजरी में हुआ। इब्ने कसीर ने 5 हिजरी को तरजीह दी, इब्ने साद ने भी 5 हिजरी ही नकल किया, और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की बाज़ रवायत से भी पता लगता है कि 5 हिजरी में ही ये अहकाम हिजाब आए थे जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ था। ये वही ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है कि जिनका पहले निकाह जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था और फिर इन दोनों के दरमियान अलहदगी हुई थी, ठीक है। ये तैयार नहीं थी इसको कंटिन्यू करने में, तो अल्लाह ताला ने अलहदगी करवा करके फिर इनसे यानी नबी रसूलुल्लाह से इनका निकाह करवा दिया था। और जैद रतन जो थे ये वही सहाबी थे जो कि नबी रसूलुल्लाह के मुंह बोले बेटे थे, और उस वक्त मुआशरे के अंदर मुंह बोले बेटे की बीवी या उसमें मुतलका ऑफ कोर्स के साथ जो है वो शादी करना जो है वो मायूब समझा जाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस वाले कस्टम को खत्म करके ये बात अपने नबी रसूलुल्लाह की जिंदगी से साबित कर दी कि नहीं, ऐसा जायज नहीं है, बल्कि मुंह बोला बेटा जो होता है वो आपके हकीकी बेटे के हुक्म में किसी तरह भी नहीं आता, तो उसकी बीवी भी जो है वो आपकी बहू के हुक्म में नहीं आती। आयत मस्कूरा में औरतों को पस पर्दा रहने का हुक्म दिया और मर्दों को हुक्म ये मिला कि अगर उनसे कोई चीज मांगनी है तो पर्दे के पीछे से मांगे। इसमें पर्दे की खास ताकीद पाई गई है कि बिला जरूरत तो मर्दों औरतों को अलग ही रहना है, जरूरत के वक्त इनसे बात करना हो तो पस पर्दा बात कर सकते हैं। तो सूरह अहज़ाब की आयत का ये मजमून था। अच्छा, कुरान करीम में पर्दा निस्वा और उसकी तफसीलात के मुताबिक 7 आयतें नाजिल हुई हैं, 4 सूरह अहज़ाब में और 3 सूरह नूर में गुजर चुकी हैं। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, इस पर सबका इतफाक है कि पर्दे के मुताबिक सबसे पहले नाजिल होने वाली यही आयत है, ला तदखुलू बुयूत नबी, कि ना दाखिल हो नबी के घर के अंदर, इल्ला अन युज़ना लकुम, सिवाय इसके कि तुम इजाजत यानी तुम्हें इजाजत दी जाए, तो उसके बगैर दाखिल ना हो। सूरह नूर की 3 आयतें और सूरह अहज़ाब की शुरू की आयतें जिनमें अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया गया है कि अपने घरों में बैठें, वकरना फी बुयूतकुन्ना, ये सब अगरचे तरतीब कुरान में पहले हैं मगर नुज़ूल के एतबार से मुअख्खर हैं। यानी कुरान के अंदर जिस तरतीब में आयात आती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नाजिल भी इसी तरतीब में हुई हो, बल्कि बाद में आने वाली आयात जो हैं वो पहले नाजिल हुई, ऐसा भी हुआ है, और पहले आने वाली आयात बाद में नाजिल हुई, जैसे कि सूरह नूर जो है वो पहले आई है और सूरह अहज़ाब बाद में आई है, लेकिन सूरह अहज़ाब की आयात पहले नाजिल हुई और सूरह नूर की आयात बाद में नाजिल हुई, एक साल के बाद। तो सूरह अहज़ाब की पहली आयत में जिसकी तस्री मौजूद है कि ये हुक्म इस वक्त दिया गया है जबकि अज़वाज मुतहरात को मिन जानिबिल्लाह इख्तियार दिया गया था कि अगर दुनिया की वसत चाहती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलाक ले लें और आखिरत को तरजीह देकर दुनिया की मईशत में मौजूदा हालत पर तनात करें तो निकाह में रहें। तो अज़वाज मुतहरात को भी ये ऑप्शन दिया गया था कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना दुनिया की, तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं तो इनके बदले में तुम्हें आखिरत मिलेगी और आखिरत में बहुत बड़ा मुकाम मिलेगा। लेकिन अगर तुम आखिरत को चाहती नहीं हो तो फिर तुम दुनिया की चीजों को पसंद कर लो, लेकिन दुनिया की चीजें तुम्हें मेरे नबी के पास नहीं मिलेंगी, ठीक है? इनके लिए ना तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे नबी के पास तो आखिरत ही मिलेगी। तो अब ये चॉइस तुम कर लो, ठीक है? तो ये चॉइस अल्लाह ताला ने ने इन इन खवातीन को दी थी और इस वक्त जो है वो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में मौजूद थी। अब इसके ऊपर शैतान दिल में डालता है कि नाउज़ बिल्ला, कहता है कि ये जो अजवाज मुतहरात थी नाउज़ बिल्ला ये बिगड़ गई थी, ठीक है? जब भी तो अल्लाह ताला को इस तरह की बात कहनी पड़ी इनसे, जिन्होंने जो है वो दुनिया परस्ती शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे अकाबरीन को अल्लाह ताला जलाए खैर दे, उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया इसका कि इन लोगों को अल्लाह ताला ने जो ये चॉइस दिया ना, तो ये चॉइस जो है वो इनको दिया तो कि इनकी भी तरबियत अल्लाह ताला फरमाते थे, ठीक है? जैसे कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों की तरबियत फरमाई, ठीक है, अल्लाह ताला ने नबियों की बीवियों की भी तरबियत फरमाई और अल्लाह ताला ने अपने नबियों के असहाब की भी तरबियत फरमाई। तो पूरा कुरान जो है वो तरबियत की आयात से भरा हुआ है, ठीक है? नबियों की भी तरबियत के आयात से कुरान भरा हुआ है, राइट? उसी तरीके से नबियों की, जब नबियों की करवाई तो नबियों की बीवियां तो नबियों से कम दर्जे की होती है ना, तो उनकी भी तरबियत की भी आयात आई। लेकिन इससे ये प्रूफ करना कि ये जो थी वो बुरी औरतें थी नाउज बिल्ला, ठीक है, ये प्रूफ करना बिल्कुल गलत होगा। और इसकी एक अकली दलील ये है कि अल्लाह ताला ने इस तरह से फरमाया था कि अगर तुम ना करोगी तो हम तुम्हें तब्दील कर देंगे दूसरी औरतों से, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने इनको तब्दील तो नहीं किया ना किसी भी दूसरी औरत से, तब्दील तो नहीं हुई, ठीक है? तो अगर ये बुरी होती तो अल्लाह तब्दील कर देता, अगर ये यानी ये बुरी थी ही नहीं जब भी तो अल्लाह ने तब्दील ही नहीं किया, और अगर इनसे ज्यादा बेहतर दुनिया के अंदर कोई औरतें होती तब अल्लाह ताला तब्दील कर देते, लेकिन दुनिया में इनसे बेहतर कोई औरतें थी ही नहीं, अल्लाह ने कोई औरत इनसे बेहतर बनाई ही नहीं थी, तो तब्दील करना बेहतर से ये मुमकिन ही नहीं था। अल्लाह ताला ने खुद ही नहीं बनाया ऐसा, अल्लाह ताला ने खुद ही पसंद किया कि इन्हीं को मैं सबसे बेहतरीन बनाऊं, ठीक है? तो इस किस्म के जो खराफात दुश्मनान करते हैं ना कि जी ये बुरी थी और इस तरह की, जब भी तो इनको बातें की गई, तो इनका जवाब यही है कि भाई तरबियत तो अल्लाह ने सबकी की, नबियों की तो नबियों की बीवी को क्यों नहीं करेंगे, और अगर इनसे बेहतर कोई होती तो अल्लाह ताला तब्दील कर देते, लेकिन अल्लाह ने तो तब्दील नहीं किया ना इनसे किसी को भी, यानी इनको किसी से भी। फिर इसके बाद 17 औरत के अहकाम और हिजाब निसा में फर्क, 211 पेज के ऊपर ये भी पढ़ना है कि मर्द औरत का वो हिस्सा है बदन जिसको अरबी में औरत और उर्दू फारसी में सतर कहते हैं, जिसका सबसे छुपाना शरी तबी और अकली तौर पर फर्ज है और ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज जिस पर अमल जरूरी है। तो ईमान लाने के बाद उमूमी तौर पर हम क्या समझते हैं, नमाज पढ़ना फर्ज है, ठीक है? और जाहिरी तौर पर तो ऐसे ही है, नमाज ही जो है वो तौहीद के बाद या ईमान के बाद नमाज ही सबसे पहले फर्ज हो जाती है, जो कि दिन में 5 मरतबा पढ़नी होती है मुसलमान को ईमान लाने के बाद, राइट? लेकिन थोड़ा सा तफसील में जाए, जो कि उलमा तफसील में जाते हैं ना चीजों की, तो निटी ग्रिटीज को फिर वो सोचते हैं देखते हैं, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो नमाज तो फर्ज है, लेकिन जब तक सतर पोशी नहीं होगी उस वक्त आप नमाज पढ़ ही नहीं पढ़ सकते, ठीक है? जब तक सतर पोशी नहीं होगी, तो इस वजह से सतर पोशी जो है वो नमाज से भी पहले फर्ज हो गई, ठीक है? तो सबसे पहला फर्ज वो सतर औरत यानी आजाए मस्तूरा का छुपाना है। और सतर का आपको बताया था पिछली क्लासों में कि ये मर्दों के लिए भी होता है और औरतों के लिए भी होता है, तो मर्द की भी अगर सतर खुला हो तो उसकी भी नमाज नहीं होगी, उसी तरह औरत का भी। तो ये फरीजा तो अच्छा, इसमें अगरचे के मौका तो इतना नहीं है इसका, लेकिन औरतों की सतर पोशी नमाज के लिए उसमें खास ख्याल, चूंकि घर के अंदर अकेली नमाज पढ़ रही होती हैं तो इस वजह से ना सतर पोशी प्रॉपरली कभी नहीं भी करती हैं। और उसकी क्या शक्ल होती है कि सर के बाल सतर में शामिल हैं, लेकिन अगर इतना बारीक दुपट्टा पहना कि बाल नजर आ रहे हैं तो नमाज नहीं होती है, ठीक है? उसी तरीके से बदन के बाकी हिस्से भी जो कि सतर में दाखिल हैं, तो अगर ऐसा कपड़ा पहन रही है जैसे आस्तीन ऐसी है कि जिससे कि अंदर की स्किन नजर आ रही है, तो सतर पोशी नहीं हुई, और सतर पोशी नहीं हुई तो नमाज भी नहीं हुई, ठीक ठीक है, तो ये एक फिकी मसला आपने दूसरी क्लासों में सुना होगा, बस यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर दिया। अच्छा, कहते हैं कि तमाम भी अलैहिस्सलाम की शरीयतों में फर्ज रहा है, बल्कि शराए के वजूद से भी पहले जब जन्नत में, ठीक है, यानी दुनिया में आने से पहले ही जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, तो शजर ममनुआ खा लेने के बाद के सबब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास उतर गया और सतर खुल गया, तो वहां भी आदम अलैहिस्सलाम ने सतर खुला रखने को जायज नहीं समझा। इसीलिए यानी इतनी शऊर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाला हुआ है, जिसकी फितरत सलीम होती है उसके अंदर मौजूद है, कि उन्होंने फौरन ही जो है, कोई शरीयत नहीं थी, कोई अहकाम नहीं आए थे, किसी ने जो है वो उनका मजाक उड़ाना नहीं शुरू कर दिया था, लेकिन खुद से जो है वो सतर पोशी शुरू कर दी पत्तों के जरिए से। इसीलिए आदम और हव्वा दोनों ने जन्नत के पत्ते अपने सतर पर बांध लिए। तो अब जरा तसव्वुर करें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो हाल है कि अपने सतर को खोल करके फिरते हैं मर्द भी और औरतें भी, तो कितनी ज्यादा यानी फंडामेंटल लेवल पे जाकर के फितरत मस्ख हो चुकी है, ठीक है, कि एहसास ही नहीं होता कि सतर खोल के फिर रहे हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने फिर रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ठीक है, सतर खोल करके, और ये इसके अंदर बाल भी आते हैं, तो मुसलमान औरतें भी जो बाल खोल करके अपनी तस्वीरें खिंचवाती हैं, तो वो भी तो सतर को दुनिया के सामने खोलने की कई जुर्म हो रहा होता है ना। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से खातम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर दीन की शरीयत, पैगंबर दीन की शरीयत में सतर छुपाना फर्ज रहा है। आज़ाए मस्तूरा की ताजीन और तहदीद में इख्तलाफ हो सकता है कि क्या क्या सतर है, ठीक है, तो इसमें इख्तलाफ उलमा के दरमियान हो सकता है और है भी, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको कि सतर कहाँ से कहाँ तक है, मगर असल फर्जियत सतर औरत की तमाम शराए अंबिया में मुसल्लम है और ये फर्ज हर इंसान मर्द और औरत पर फी नफ्स ही आयद है, कोई दूसरा देखने वाला हो या ना हो। इसीलिए अगर कोई शख्स अंधेरी रात में नंगा नमाज पढ़े, हालांकि सतर छुपाने के काबिल कपड़ा उसके पास मौजूद हो, तो ये नमाज बिल इत्तेफाक नाजायज है, हालांकि उसको नंगा किसी ने देखा ही नहीं, ठीक है, तो किसी के देखने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सतर पोशी जो है वो फर्ज है, अगर उसके पास कपड़ा है ही नहीं, ठीक है, ऐसा कि जैसे वो समंदर में डूब गया, कुछ सहाबा जो है वो उनकी किश्ती टूट गई थी और उनके कपड़े जो थे वो इस किस्म के थे कि अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने समंदर के अंदर हाथ पैर मारे तो उनके कपड़े ही निकल गए, ठीक है, तो जब वो पहुंचे उसके ऊपर साहिल के ऊपर पहुंचे, तो दूर दूर तक कपड़े वगैरह टाइप की कोई चीज थी नहीं, तो उस हालत में उनको जो है वो नमाज पढ़नी पड़ी, तो वो मजबूरी वाली हालत थी। और मजबूरी वाली हालत की डेफिनेशन क्या है कि मजबूरी जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है, बेशक उसकी शक्ल गुनाह वाली हो, ठीक है, शक्ल जो है वो गुनाह वाली हो, लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से आपको इस सिचुएशन में डाला गया है, तो अब वो शरीयत में गुनाह नहीं बनता, ठीक है, शक्ल गुनाह वाली है लेकिन गुनाह नहीं बनेगा, क्योंकि आपने अपने आप को उस हालत में नहीं डाला, बल्कि अल्लाह ने आपको उस हालत में डाला। मूसा अलैहिस्सलाम की ये तफसीर के अंदर किस्सा मौजूद है कि वो एक दफा इसी तरह का उनकी सिचुएशन हुई, अल्लाह की तरफ से हिकमत थी कि पत्थर जो है ना जिसके ऊपर उन्होंने अपने कपड़े रखे थे, ठीक है, पत्थर पे उन्होंने अपने कपड़े रखे थे और छुप करके वो गुसल कर रहे थे, तो पत्थर जो है वो उनके कपड़ों को लेके भागना शुरू हो गया। कैन यू बिलीव इट, ठीक है, ये हदीस सहीह से मौजूद है और ये मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ऐसा हुआ था, ठीक है, उसकी बाकी तफसील जो है उस मौके के ऊपर ही पढ़े, लेकिन अब जो उनको अपने कपड़ों को पकड़ने के लिए भागना पड़ा, ठीक है, तो अल्लाह ताला वहां पर क्या सिचुएशन करना चाह रहे थे, कुछ लोगों को उनका बदन दिखाना चाह रहे थे, ठीक है, उसकी रीजन थी, तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम बज़ाहिर शक्ल क्या है, ये गुनाह की शक्ल है, सतर खुल गया जी, लोगों के सामने आ गए, ठीक है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये चीज एनफोर्स थी, ठीक है, तो इस वजह से इनको कोई गुनाह नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको जो है ना शैतान के बहकावे में आकर के मैनिपुलेट करते हैं, हम कहते हैं जी हमें खुद जो है वो गुनाहों का एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है, तो ताकि जो है ना वो पता लग सके कि जी क्या गलत है क्या सही है। तो भाई आप जब खुद गुनाह का एक्सपोजर करेंगे या किसी को करवाएंगे तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, और ये गुनाह जो है वो आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा, अल्लाह ताला का कोई नामे अमाल नहीं होता, ठीक है, कि अल्लाह के नाउज़बिल्लाह नामे अमाल में लिखा जाए, आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा, और इस सिर्फ नामे अमाल में लिखने का मसला नहीं है, बल्कि इस गुनाह के फिर जो जो असरात होंगे ना वो भी आपकी जिंदगी में आएंगे, दुनिया में भी आएंगे, और अगर तौबा ना करिए तो आखिरत में भी आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सतर छुपाना का मामला। अच्छा, सतर इज टू बी हिडन, ओनली टू बी हिडन इन नमाज। जी, नमाज के बाहर तो सतर खोल के फिर सकते हैं ना, इस किस्म की सवाल ना क्या करें। घर में महरम रिश्तों के सामने सतर कवर करना सुन्नत है या वाजिब है? इसके महरम रिश्तों के सामने जो जो जितना कवर करना होता है, ये सुन्नत और वाजिब वगैरह का कोई इसके अंदर मसला नहीं है, लेकिन आगे ये तफसील आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो तफसीली अहकाम है ना, ये सूरह नूर की आयात की तफसीर के तहत हमने पढ़ने। अभी हम अहकाम हिजाब की समझ लें कि बहुत हाई लेवल डिटेल्स पढ़ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले इसमें हमने हिकमतें पढ़ी, और उसके बाद जो है वो हम इसके यानी दर्जे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद इसकी एग्जैक्टली तफसील, क्या चीज छुपानी है या कहाँ छुपानी है, कहाँ नहीं छुपानी है, ये सारी चीजें जो है सूरह नूर के तहत करनी है। तो इसीलिए आदम और हव्वा दोनों ने जन्नत के पत्ते अच्छा ही हो गया। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर दीन की शरीयत में सतर छुपाना फर्ज रहा है। अजाए मस्तूरा की ताजीन और तहदीन में इख्तलाफ हो सकता है कि सतर कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा ये हो गया, सॉरी। खारिज नमाज लोगों के सामने सतर पोशी के फर्ज होने में तो किसी का इख्तलाफ ही नहीं, ठीक है ना, यानी नमाज के बाहर सतर पोशी का फर्ज होना, तो इसके बारे में किसी का इख्तलाफ नहीं, यानी उलमाए कराम का इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, लेकिन खलवत में जहां कोई दूसरा देखने वाला मौजूद ना हो, वहां भी सही कौल यही है कि खारिज नमाज में भी बिला जरूरत शरईया या तबईया के सतर खोलकर नंगा बैठना जायज नहीं है। ठीक है, सारा का सारा मामला गुनाह का ही है, और गुनाह जो है वो जिसकी डेफिनेशन के अंदर गुनाह तो मक्खी जैसा हो। ठीक है, मुनाफिक जो होता है तो उसकी डेफिनेशन में गुनाह क्या होता है, मक्खी थी मेरे नाक पे बैठी, मैंने उड़ा दी, खत्म बात। ठीक है, तो लफ्ज गुनाह जिसकी जिंदगी में मक्खी से ज्यादा हैसियत ना रखता हो, तो जाहिर है उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, सब सब चीजें वो करेगा अपनी मर्जी से। ठीक है ना, लेकिन जिसकी डेफिनेशन में गुनाह जो है वो पहाड़ की तरह हो, जैसे कि एक मोमिन की जिंदगी में गुनाह की डेफिनेशन क्या होती है कि एक पहाड़ है जो कि उसके ऊपर आया हुआ है, उसके ऊपर गिर पड़ा है पहाड़। ठीक है, अब उसकी वो कितनी तकलीफ में होगा, किसी के ऊपर पहाड़ आके गिर जाए तो वो कोई उसको हल्का समझेगा, मक्खी की तरह नहीं समझेगा ना। तो इस वजह से ये सारा का सारा जो मामला चल रहा है ना, ये सब जो है वो इट डिपेंड्स ऑन आप मोमिन है कि आप मुनाफिक हैं। ठीक है, अगर मुनाफिक हैं देन डू व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर हया खत्म हो गई है, मुनाफिकों मुनाफिकीन में शामिल हो गए हो, एमल माशे था, जो चाहो करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली छुट्टी दे दी। ठीक है, वो तो पकड़ा जाएगा, जब पकड़ा जाएगा ना तो उससे पहले जो है जो चाहो तुम करो। ठीक है, तो फिर ये सब जो है ना, वो सब का सब जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारे नजदीक गुनाह का क्या मामला है, पत्थर वाला मामला है या मक्खी वाला मामला है। ठीक है, तो नमाज लोगों के साथ, अच्छा ये खारिज नमाज भी बिला जरूरत शरई या तबिया के सतर खोलकर नंगा बैठना जायज नहीं है, क्योंकि इससे गुनाह मिलता है। अच्छा, यानी क्योंकि इससे आपके ऊपर मक्खी आके बैठ जाएगी। ठीक है, अगर आप मुनाफिक है तो क्या कहेंगे, क्योंकि इससे आपके ऊपर मक्खी आके बैठ जाएगी, लेकिन अगर आप मोमिन है तो फिर इस जुमले का मतलब क्या होगा, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ आकर के गिर जाएगा। ठीक है, अब आप डिसाइड कर लीजिए करना है कि नहीं करना। अच्छा, तो ये हुक्म तो सतर औरत का था जो अव्वल इस्लाम से बल्कि अव्वल आफरीनश से तमाम शराए अंबिया में फर्ज रहा है, जिसमें मर्द तो औरत दोनों बराबर है, जलवत तो खलवत में भी बराबर है, जैसे लोगों के सामने नंगा होना जायज नहीं है, ऐसे ही खलवत और तन्हाई में भी बिला जरूरत, ठीक है, बिला जरूरत शरिया नंगा होना जायज नहीं है। ठीक है, तो आजकल तो सुना है लोगों से कि जी मुसलमान घरानों के अंदर, जैसे कि हजरत एक हिजाब की किताब है, उसमें वो अमेरिका के शेख के अंदर रहते हैं वो शेख, तो उन्होंने लिखा भी है और हमें मालूम है, लोगों ने बताया कि जी घरों के अंदर मुसलमान औरतें जो है वो ऐसा लिबास पहन के रहती हैं जैसे कि काफिर औरतें घरों के बाहर लिबास पहन कर रहती हैं। ठीक है ना, तो अब तो दूसरा मसला हिजाब और पर्दे का है कि औरतें अजनबी पर्दों से और अजनबी मर्दों से पर्दा करें। अच्छा, ये हिजाब वाला मसला शुरू हुआ, पहले सतर वाला मसला डिस्कस हो गया। इस मसले में भी इतनी बात तो अंबिया सुलहा और शरफा में हमेशा से रही है कि अजनबी मर्दों के साथ औरतों का बेमहाबा इख्तलात ना हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो लड़कियों का किस्सा जो कुरान करीम में पारे में आया है, कि दो लड़कियों का किस्सा जो कुरान करीम में पारा नंबर 20 में आया है, इसमें लड़कियां अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए बस्ती के कुएं पर गईं, जहां लोगों का हुजूम था वो अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। तो कुरान करीम में है कि ये लड़कियां एक तरफ अलग खड़ी हो गईं, حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا اس وقت اتفاقی طور پر مسافرانہ انداز میں وہاں گزر ہوا تو ان لڑکیوں کو علیحدہ کھڑے دیکھ کر سبب پوچھا تو لڑکیوں نے دو باتیں بتلائیں۔ اول یہ کہ اس وقت یہاں مردوں کا ہجوم ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی اس وقت پلائیں گے جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ بھی بتلائی کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف ہیں، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلنا یہ عرف و عادت کے اعتبار سے عورتوں کا کام نہیں تھا، مگر والد کے ذوق مجبوری اور کسی دوسرے آدمی کے موجود نہ ہونے کے سبب یہ کام ہمیں کرنا پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس واقعے کو کچھ لوگ جو کہ یا تو وہ علماء سو ہیں، ٹھیک ہے، اور علماء سو کی ڈیفینیشن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یا یہ کہ وہ بیچارے علماء ایک لحاظ سے بن تو گئے ہیں لیکن حکمت جو شریعت کے مقاصد ہوتے ہیں، شریعت کی حکمتیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک پاسبلٹی تو ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر واقع یہ جو بنات شعیب علیہ السلام ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ پروف کے ایز اے پروف کس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کے لیے باہر نکل کر کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا جو ہے وہ جائز تھا، اور یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں دیکھو نکل کر کے کام کر رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے مردوں کے ساتھ یعنی اختلاط کر رہی تھیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ جی نہ تو یہ کہ ان کے یعنی باہر نکل کے کام کرنا جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، اور نہ یہ کہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنا اور انٹریکشن کرنا جو کوئی پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پھر علماء نے جو ہے نا وہ یعنی دوسری تفصیل جو کہ آپ کے سامنے بھی ہم نے پڑھی، تو اس میں کچھ عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے تب جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ حال قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا بتایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ زمانے اور ان کی شریعت میں بھی عورتوں مردوں کا دوش بدوش چلنا بے محات محابہ اختلاط پسند نہیں تھا۔ ایک صاحب جو ہے وہ اپنے ایک بیان میں کہنے لگے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آگے سے کسی عورت کو آتے ہوئے دیکھا تو اب جو ہے وہ دوسرے راستے پہ جانا شروع ہو گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے، اور ساری رات جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کر کے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتے رہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مذاق بنایا ہوا انہوں نے اس بات کو، اور اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ ایسا وہاں پر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ یعنی الگ رہتے ہوں اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ بات چیت نہ کرتے ہوں۔ تو یہ یعنی اسپیشلی آج کل کے ماڈرن عالم ہوں یا عالم علماء سو ہوں تو ان کی پھر ظاہر ہے وہ تو ان کے تو مقصد الگ ہوتا ہے نا، وہ تو معاشرے کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ ان کی جو شہوانی تقاضے ہوتے ہیں نا، جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے اس کے اندر ذرا ایک ماڈرن قسم کا انریسٹرکٹڈ قسم کا ماحول ہونا چاہیے۔ تو اب جو ہے نا وہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں، قرآن کے واقعات کو استعمال کرتے ہیں اپنے اس گول آف لائف کو پروف کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے عوام الناس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا ہے اس کا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر کیا غلطی ہے، وہ اوپر سے تھوڑی سی جو ہے وہ صحیح باتیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ شرنک ریپ کر کے وہ باطل نظریات کو بھی داخل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اوپر سے یہ صرف جو ہے وہ نا وہ غلط بات نہیں کرتے، وہ صحیح باتوں کے اندر ریپ کر کے غلط باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک صاحب کہنے لگے، اسی طرح کے ایک بڑے ہیں، ان کے علماء سو کے بڑے ہیں، کہنے لگے کہ جی یہ جو حج نماز یہ جو عمرہ اور حج وغیرہ اور رمضان المبارک سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، رمضان المبارک کی نیکیوں سے اور حج کر لینے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو یہ گناہ جو ہیں وہ حقوق العباد سے تعلق نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، یہ حقوق العباد سے تعلق نہیں رکھتے، کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں بالکل، ٹھیک ہے نا، حقوق العباد ایسے معاف نہیں ہو جاتے کہ جی آپ نے جو ہے رمضان کی نیکیاں کر لی اور حج کر کے آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو انہوں نے ٹھیک کری، آگے کیا کہہ رہے ہیں، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رمضان کی نیکیاں کرنے سے اور حج کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، یہ حقوق اللہ والے گناہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حقوق اللہ والے گناہ ہوتے ہیں، یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حقوق اللہ والے گناہ جو انہوں نے کہہ دیا، اس کے آگے انہوں نے تفصیل تو نہیں بیان کری، ٹھیک ہے، کہ کون سے والے حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو جی حقوق اللہ کے اندر کون سا والا ہے سب سے بڑا ایک حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، نماز، ٹھیک ہے، فرائض کے اندر سے سب سے بڑا فرض کیا ہے، نماز ہے نا، ٹھیک ہے، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ، جو کہ ایک عوام کا سننے والا جو ہے وہ اس میں سے یہ چیز اخذ کرے گا کہ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، رمضان میں آپ نے نیکیاں کریں اور جی آپ کی جو جتنی قضا نمازیں ہیں وہ آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ معاف ہو گئی۔ ठीक है, हज करके आए, सारी जिंदगी की नमाजें माफ हो गई, सारी जिंदगी के रोजे माफ हो गए। हत्ता कि शायद उन्होंने कहा भी था कि जी नमाज रोजा वाले गुनाह जो है ना ये माफ हो जाते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, राइट। तो क्या कर रहे हैं ये अच्छी बात के अंदर बुरी बात को जो है ना छुपा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा कि अच्छे ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं असल में, ठीक है। तो इसी तरीके से शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का वाकया भी इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जी ये कोई मसला नहीं है जी, ये मिलजुल करके काम करने में। ये हाल कुरान में हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की लड़कियों का बताया गया है, जिससे मालूम हुआ कि जमाने और उनकी शरीयत में भी औरतों मर्दों का दोष बदोश चलना और बेमहाबा इख्तलात पसंद नहीं था, और ऐसे काम जिनमें मर्दों के साथ इख्तलात हो वो औरतों के सुपुर्द ही नहीं किए जाते थे। वो तो वालिद साहब बूढ़े थे, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, बकरियां मर जाती तो उनका खाने पीने का मामला हो जाता, ठीक है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगी तो बकरियां कैसे जिंदा रहेंगी, ठीक है। तो इस वजह से इनको ये करना पड़ा था। तो इन्होंने दे मेड श्योर टू मेंशन द फैक्ट कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, वरना किसी चलते फिरते और मर्द को जो कि आकर के आपसे पूछ रहा है कि आप ये क्यों क्यों खड़ी हुई है, घर के अहवाल बताने की क्या जरूरत है कि मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं, ठीक है, गोया कि मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं, मेरे अभी तक शादी नहीं हुई, प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए, राइट। ये बताना चाह रही थी वो, इसलिए बताया था कि वालिद साहब बूढ़े हैं। बहरहाल इस मजमुए से ये मालूम होता है कि औरतों को बाकायदा पर्दे में रहने का हुक्म इस वक्त नहीं था। इस तरह इब्तिदाए इस्लाम में भी यही सूरत जारी रही। 3 या 5 हिजरी में औरतों पर अजनबी मर्दों से पर्दा करना फर्ज कर दिया गया, जिसकी तफसीलात आगे आती हैं। इससे मालूम हो गया कि सतर औरत और हिजाब निसा ये दो मसले अलग अलग हैं। सतर औरत हमेशा से फर्ज है, हिजाब निसा 5 हिजरी में फर्ज हुआ। सतर औरत मर्द औरत दोनों पर फर्ज है और हिजाब सिर्फ औरतों पर फर्ज है। सतर औरत लोगों के सामने और खलबत दोनों में फर्ज है, हिजाब सिर्फ अजनबी की मौजूदगी में फर्ज है। ये तफसील इसलिए लिखी गई है कि इन दोनों को खलत मलत कर देने से बहुत से शुबहात मसाइल और अहकाम कुरान के समझने में शुबहात मसाइल और अहकाम कुरान के समझने में पैदा हो जाते हैं। मसलन औरत का चेहरा और हथेलियां सतर औरत से बइजमा मुस्तस्ना है, ठीक है, सतर औरत से चेहरियां और सॉरी हथेलियां और चेहरा ये बइजमा मुस्तस्ना है, इसीलिए नमाज में चेहरा और हथेलियां खुली हों तो नमाज बिल इत्तेफाक बइजमा जायज है। चेहरा और हथेलियां तो अज़रूए नस मुस्तस्ना है, कदमैन को फुकहा ने इन पर कयास करके मुस्तस्ना करार दिया है, ठीक है। थोड़ा सा सबर कर लिया करें, एकदम अगले लम्हे ही एक बात आ रही होती है और धड़ से आपने सवाल पूछना होता है। प्राइवेट चैट की सहूलत का मतलब ये भी नहीं है कि उसको अब्यूज किया जाए ना, हर चीज जो है वो उसको उसको यूज करना चाहिए, अब्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सब्र के साथ सुने, भी बार बार ही आपको बताया जा चुका है कि जो अहकाम की तफसीलात हैं वो आगे आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल था कि घर में महरम रिश्तों के सामने सर कवर करना सुन्नत है या वाजिब है। अच्छा, ये आप लिखा क्या है, सर कवर करना लिखा है आपने क्या, आपने सतर कवर करना लिखा है, ठीक है, बिकॉज सर कवर ना तो सतर कवर करना है ना, सर के बाल जो होते, सर जो होता है यानी अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के सर जो है वो उमूमन तो बाल होते ही है ना उनके ऊपर, गंजी औरत अगर होगी तो फिर उसका सर जो है वो गंजा सर जो है वो बालों के हुक्म में आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल बाल जो है वो सतर में दाखिल है तो वो तो फर्ज है ना सतर कवर करना। सेम एग्जाम्पल इज गिवन अबाउट हजरत खदीजा रतन दैट शी वॉज अ बिजनेस लेडी। हाँ, वो बिजनेस रेडी थी का मतलब क्या होता है कि भाई बिजनेस रेडी तो यानी जो कैपिटल को ओन करता है और वो जो के यानी जो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। बिजनेस रेडी का मतलब ये नहीं होता कि जरूरी है कि वो जाकर के दुकान पर भी बैठे और मर्दों के साथ जो है वो बेमहाबा इख्तलात भी करे, ठीक है। तो बिजनेस रेडी के डेफिनेशन के अंदर ये सारी चीजें तो हमने दाखिल कर दी है ना खाम खा की। तो अजनबी मर्दों से, और पहली बात तो एक हिजाब के अहकाम उस वक्त आए नहीं थे जब हजरत खदीजा अनहा हयात थी, ठीक है। दूसरा ये कि उनका जो इख्तलात मर्दों के साथ होता था तो वो कैसे होता था, यानी हया के साथ होता था या बेहयाई के साथ होता था। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का इख्तलात मर्दों के साथ हुआ लेकिन मजबूरी में हुआ और हया के साथ हुआ। उनकी हयात के बारे में तो अल्लाह ताला ने उनके चाल में ही जो है वो हया का तذکرہ करें, तमशी बिल हया, ठीक है, कि वो इस्तेहया के साथ जो है वो चल रही थी। तो उसी तरह खदीजा का जो बिजनेस था वो भी इन्हीं सारी चीजों के साथ ही था। अच्छा, तो लेकिन अजनबी अजनबी मर्दों से पर्दे में भी चेहरा और हथेलियां मुस्तस्ना हैं या नहीं, इसमें इख्तलाफ है, जिसकी तफसील सूरह नूर की आयत ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा के तहत गुजर चुकी है, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे, जिसका खुलासा आगे आता है। हिजाब शरी के दर्जात और उनके अहकाम की तफसील। पर्द रस्वा के मुताल्लिक कुरान मजीद की 7 आयात और हदीस की 70 रिवायात का हासिल ये मालूम होता है। ठीक है, अब ये उलमा का क्या काम होता है? उलमा का ये काम होता है कि कुरान और हदीस को तफसीली तौर पर कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, उसको पढ़ें, अपने बड़ों से बुजुर्गों से सीखें उनके मतालब को, और उनसे जो है वो कंक्लूजन ड्राइव करें, ठीक है, इज्तिहाद करें मसाइल का कि जी इनका मफहूम क्या है और हमारे केसेस के अंदर, हमारी सिचुएशंस के ऊपर इनकी क्या एप्लीकेशन होती है। तो ये उलमा का काम होता है और ये उलमा का काम इन्होंने किया। तो ये आगे फरमा रहे हैं कि हासिल ये मालूम होता है, यानी कि सम कंक्लूजन, सम टोटल ये मालूम होता है कि असल मतलूब, असल मकसद शरीयत का क्या है, वो शर असल मतलूब शरई हिजाब अशखास है, शख्स का हिजाब, शख्स को छुपाना, शख्स का मतलब द होल पर्सन, ठीक है, औरत का जो होल पर्सन होता है ना, उसको छुपाना असल मकसूद शरई है, यानी औरतों का वजूद और की नकल हरकत मर्दों की नजरों से मस्तूर हो, छुपी हुई हो, अलग हो, सेपरेशन हो, सेग्रीगेशन हो, ये असल मकसूद है, जो घरों की चार दीवारी या खीमों और मुअल्लक पर्दों के जरिए से हो सकता है। इसके सिवा जितनी सूरतें हिजाब की मनकूल हैं वो सब जरूरत की बिना पर और वक्त जरूरत और कदर जरूरत के साथ मुकैद और मशरूत है, यानी कितनी जरूरत है, जरूरत का वक्त है या वक्त नहीं है, इसके ऊपर फिर बाकी चीजें डिपेंड करती हैं, जो कि यानी रिलैक्सेशन है चार दीवारी से, ठीक है, असल जो है वो तो चार दीवारी या खीमा या पर्दा। इसी तरह पर्दे का पहला दर्जा जो असल मतलूब शरई है वो हिजाब अशखास है, कि औरतें अपने घरों में रहें। लेकिन शरीयत इस्लामिया एक जामे और मुकम्मल निजाम है जिसमें इंसान की तमाम जरूरियात की रियायत पूरी की गई है, और ये जाहिर है कि औरतों को ऐसी जरूरतें पेश आना नागुजीर है कि वो किसी वक्त घरों से निकलें। इसके लिए पर्दे का दूसरा दर्जा कुरान सुन्नत की रूह से ये मालूम होता है कि सर से पांव तक बुरका या लंबी चादर में पूरे बदन को छुपा कर निकलें। रास्ता देखने के लिए चादर में से सिर्फ एक आंख खोलें या बुरके में जो जाली आंखों के सामने इस्तेमाल की जाती है वो लगा लें। जरूरत के मौके पर पर्दे का दूसरा दर्जा भी पहले की तरह सब उलमा व फुकहा के दरमियान मुत्तफिकुन अलैह है। तो ये पहला दर्जा क्या हुआ? हिजाब अशखास, पूरे के पूरे शख्स को, अपने पर्सन को छुपा करके रखना, और इससे जब जब एक्सेप्शन ली जाती है, किसी जरूरत के तहत बाहर निकलना होता है, क्योंकि ये जरूरत जो है वो औरतों को पेश आती है, तो शरीयत ने इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई कि जी आप बस अंदर रहें और यहां से आपका आपकी नियत ही निकले, ऐसी कोई शरीयत ने शर्त नहीं लगाई है। तो इस वजह से औरत निकलती है, तो औरत जब निकलेगी तो फिर किस किस्म का पर्दा है? ये दूसरे दर्जे का पर्दा कहलाता है। अब यहां पर एक बात फिर से सुन लें कि बालों का जो हुक्म है, सर के बालों का जो हुक्म है वो सतर का हुक्म है, ठीक है, तो सतर जो होता है वो अच्छा, अब मैं समझा आपके सवाल को। नहीं, महरम मर्दों के सामने ना ये बाल जो है वो सतर में शामिल नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सेप्शन कुरान की आयात के अंदर है, ठीक है, जो कि सूरह नूर की आयात के अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा, गैर महरम मर्दों के लिए जो है वो सतर की डेफिनेशन में है, क्योंकि उसके लिए कोई एक्सेप्शन वाली आयात नहीं आई है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक आंख वाला बुर्का जिन्होंने लिखा कि सिर्फ एक आंख खोलें, तो इसको जो है वो उलमाए कराम ने, जैसे कि शुरू में आपको बता दिया है कि जी उलमा के ऊपर एतमाद जो है ना वो इसके अंदर सबसे ज्यादा की हैसियत रखता है, तो इस दौर के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद में उलमा है, यानी उलमा की एक बड़ी तादाद में, ठीक है, सारे नहीं बल्कि बड़ी तादाद में, जो दो आंखों वाला को खोले वाला बुरका है ना, तो उसकी भी इजाजत दी है। हालांकि उससे ज्यादा अफजल चीज मौजूद है कि जी ऊपर से ही डाल लिया जाए, जो कि यानी इसी सूरह अहजाब की आगे की आयात के तहत इन्होंने जिक्र किया है कि ऊपर से, यानी एक पतला कपड़ा कि जिसके थ्रू आपको नजर आता हो, अगर सर के ऊपर से डाल लिया जाए तो ये सबसे ज्यादा अफजल है, ठीक है। लेकिन एक आंख को खोने की इजाजत तो यहाँ लिखी हुई है, और दो आंख को खोने की इजाजत जो है वो मौजूदा दौर के अंदर उलमा ने इस बुरके तक की इजाजत दी है, ठीक है। और वो एक आंख और दो आंख का मसला क्या होता है कि एक आंख से जो है वो आपको नजर तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने दो आंखें दी हैं तो उससे जो है ना वो एक पैनोरामिक व्यू होता है, जिससे कि इंसान को जरा राइट एक्सट्रीम से लेकर के लेफ्ट एक्सट्रीम तक सब कुछ नजर आ जाता है, और एक आंख से जो है वो इतना ज्यादा आपका विजन क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो उसमें फिर तकलीफ का भी एहतमाल है, गिरने पड़ने का भी एहतमाल है, तो इस वजह से दो आंखों का बुरका जो है वो इस वक्त राइज होता है, दो आंखों के खुले रहने वाला, जिसको नकाब यानी कहेंगे। एक तीसरा दर्जा भी बाज रिवायात से मफहूम होता है कि जिसमें सहाबा व ताबईन और फुकहाए उम्मत की राय मुख्तलिफ हैं, वो ये कि औरतें जब बजरूरत घरों से बाहर निकलें तो वो अपना चेहरा और हथेलियां भी लोगों के सामने खोल सकती हैं, ठीक है। देखें, खोल सकती हैं और खोल दें, ये खोल दें वाला मामला डिफरेंट होता है और खोल सकती हैं वाला मामला डिफरेंट होता है, बशर्ते कि सारा बदन मस्तूर हो, पर्दे शरी के इन तीनों दर्जों की तफसील ये है। तो ये तफसील भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो खोल दें वाला जो मामला है महरम मर्दों के सामने, तो वो तो बतकाज़ा जरूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात क्लियर करी है उन्होंने कि वो खोल सकती हैं जब जरूरत पड़े, ठीक है, यानी इस वक्त भी जो है वो, यानी ये जो इख्तलाफ है ना कि जो उलमा या जो सहाबा जो है वो ये कहते हैं कि जी ये पर्दे के अंदर दाखिल नहीं है, तो उनके यहाँ भी जो है वो खोल सकती है वाला मामला है। तो अब इन तीनों को जब अलग अलग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये बात थोड़ी और क्लियर हो जाएगी कि पहला दर्जा हिजाब अशखास बिल वजूद, ठीक है। तो इसमें इन्होंने फिर तारीख से यानी साहब अकराम की जिंदगियों से नकली दलाइल देकर के इस बात को प्रूव किया है कि अशखास हिजाब अशखास ही असल है मकसूद शरीयत। कुरान और सुन्नत की रूह से असल मतलूब यही दर्जा है। सूरह अहज़ाब की ज़ेर बहस आयत वएज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान फसअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, इसकी वाज दलील और से ज्यादा वाज सूरह अहज़ाब ही की शुरू की आयत वकरना फी बुयूतकुन्ना है कि इन आयतों पर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया, इससे और ज्यादा इसकी तशरीह सामने आ जाती है। ये ऊपर मालूम हो चुका है कि पर्दा निस्वा के मुताबिक पहली आयत हज़रत ज़ैनब के निकाह के वक्त नाजिल हुई। रवायात हदीस में हज़रत अनस ने फरमाया कि मैं इस वाक़े हिजाब को और सबसे ज्यादा इसलिए जानता हूँ कि मैं उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। जब पर्दे के लिए ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के सामने एक चादर वगैरह का पर्दा डाल करके हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को अंदर मस्तूर कर दिया, छुपा दिया हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को। ये नहीं किया कि उनको बुरके या चादर में मस्तूर कर देते, ठीक है, यानी उनके ऊपर एक बुरका नहीं डाल दिया, बल्कि दरमियान एक हिजाब रुकावट क्रिएट कर दी। शान नजूर में जो वाकया हजरत उमर बिन खताब रतान का ऊपर गुजर चुका है, इससे भी यही मालूम होता है कि हजरत उमर रतान का मकसूद ये था कि उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना मर्दों की नजरों से अलग रहें, जैसा कि इनके इन अल्फाज से मालूम होता है, यदखुलू अलैकल बर्रु वल फाजिरु, यानी उमर रतान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये यानी कुरान की इन आयात के नाजिल होने से पहले ये सजेशन रखी थी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी औरतों को जो है वो पर्दे में रखें, क्योंकि आपके पास जो है वो नेक लोग भी आते हैं, तो वो तो चलो जी हया वाले होते हैं, वो तो ख्याल रखेंगे इज्जत का, लेकिन बुरे लोग भी तो आते हैं ना, जो कि कोई बात पूछने के लिए आ जाते हैं या वैसे ही जो है वो दीन समझने के लिए, दीन सीखने के लिए आ जाते हैं, तो वो अभी तो नेक नहीं बने होते हैं, तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं, तो वो तो फिर हया का ख्याल नहीं रखेंगे, आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रखेंगे। तो ये मवाफिकात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में से ना एक मुकाम ये भी है, मवाफिकात उमर उन मुकामात को कहते हैं कुरान के जिनकी आयात नाजिल बाद में हुई और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो बात पहले फरमाई, ठीक है, और उनकी मवाफिकत में अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई। ये तकरीबन 18 मुकामात है कुरान के अंदर ऐसे, तो इमेजिन करें उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या मुकाम होगा अल्लाह ताला के नजदीक। सही बुखारी बाब गज़वा मौता में हजरत सदीका आयशा तआला की रवायत है कि जब सूरा सल्लम को हजरत जैद बिन हारसा और जाफिर और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शहादत की खबर मिली तो आप सल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते थे। आप सल्लम के चेहरे मुबारक पर सख्त गमो गुस्से गमो सदमे के आसार थे। मैं हजरे के अंदर दरवाजे की एक शिक यानी छोटा सा एक ओपनिंग थी, उससे ये सब माजरा देख रही थी। नबी सल्लम के चेहरे मुबारक के ऊपर कैसे तासरात से मैं ये सब देख रही थी। इससे साबित हुआ कि उम्मुल मोमिनीन ने हादसे के वक्त भी बाहर आकर बुरके के साथ मजमे में शामिल नहीं हो गई थी। بلکہ دروازے کی شق سے اس جلسے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھ لینا، اس کی تو اجازت بڑے علماء کے نزدیک ہے، کیونکہ اس کی یہی سب دلیلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ ایک واقعہ ہے، دوسرا واقعہ ہے کہ وہ حبشیوں کا جو ایک کھیل ہو رہا تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں چھپ کر کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی عمرۃ القضاء کے باب میں ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر متصل تشریف رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کے متعلق باہم گفتگو کر رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں ہم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مسواک کرنے اور حلق صاف کرنے کی آواز حجرے کے اندر سے سنی۔ آگے واقعے کے اندر عمرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس روایات سے معلوم ہوا کہ آیات حجاب نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ گھروں میں رہ کر پردہ کیا کرتی تھیں، یعنی باہر جو ہے وہ نکلنی آیا کرتی تھیں، لوگوں سے بات چیت نہیں کیا کرتی تھیں اور اختلاط نہیں کیا کرتی تھیں، اور اس کے اندر بھی باہر نکلتی تھیں لیکن بڑی شدید ضرورت سے۔ پہلے جو ہے وہ کم شدید ضرورت سے بھی باہر نکل جاتی تھیں، لیکن پہلے بھی اختلاط کامن نہیں تھا، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ایون نان مسلم معاشروں کے اندر کامن نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تو بالکل ہی اندر بند ہو گئی نا، بالکل ہی اندر کی ہو کر کے رہ گئیں اور صرف جو ہے وہ شدید ضرورت کے تحت باہر نکلتی تھیں۔ اسی طرح صحیح بخاری باب غزوت الطائف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے برتن میں کلی کر کے حضرت ابو موسیٰ اور بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ اس کو پی لیں اور اپنے چہرے پر مل لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ایک برتن کے اندر کلی کی۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو بڑی کراہیت محسوس ہوتی ہے نا اس بات میں اور ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ پانی تو ایک فزیکل چیز ہے، منہ بھی جو ایک فزیکل چیز ہے، لیکن نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی جو مقام تھا، تو یہ روحانی اثرات جو ہوتے ہیں وہ روح سے لے کر کے فزیکل چیزوں کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پانی کے اندر، منہ کے تھرو پانی کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور پانی کو جو دوسرا شخص پیے گا تو اس کو بھی اس سے روحانی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے روح اور جسم کے درمیان۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے سے واقعہ دیکھ رہی تھیں، انہوں نے اندر سے آواز دے کر ان دونوں بزرگوں سے کہا کہ اس تبرک میں سے کچھ اپنی ماں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں آواز کے پردے کے بارے میں بھی پیچھے ہم نے بات کری تھی کہ آواز اگر لچدار نہ ہو، لہجہ جو ہے وہ ایسا نہ بنایا جائے تو اس کا پردہ نہیں ہوتا۔ تو اور دوسرا یہ کہ یہ بھی اندر سے دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ فرمایا، تو پھر انہوں نے پیچھے سے حجاب کے اندر سے جو ہے مخاطب کیا ان لوگوں کو۔ یہ حدیث بھی شاید ہے کہ نزول حجاب کے بعد ازواج مطہرات گھروں اور پردوں کے اندر ہی رہتی تھیں۔ اس روایت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کے ایسی شاید تھیں جیسے دوسرے مسلمان، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کی خصوصیت تھی، ورنہ بیوی سے جو بے تکلف تعلق شوہر کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم، تقدس و تعظیم کا یہ درجہ قائم رہنا عادتا ناممکن ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ عموماً بیویاں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ ایسے بے تکلف ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ ایسا تقدیس و تحریم والا معاملہ نہیں رہتا، اگرچہ کہ شوہر کتنے بڑی شیخ ہو، کتنے بڑی مولانا ہوں، ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کے استاد ہوں، لیکن پھر بیوی کے جوش میں کہتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام جو ہے وہ صاحب ان کو موٹ کر دیا، لیکن ابھی
وہاں پہ بھائی پڑھ رہا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا بس تھوڑی دیر میں ختم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی کتاب الادب میں حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ انس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ انس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سوار تھی، ایک ہی اونٹ کے اوپر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں اچانک اونٹ کے ٹھوکر لگی اور ابو طلحہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹ سے گر گئے، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس معاملے کے اندر اونٹ سے گرے، لیکن ابو طلحہ جو ہے وہ پہلے امہات المومنین کے پاس نہیں گئے بلکہ پہلے ان کے شوہر کے پاس گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ادب کا تقاضا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، کہ اور یہ ادب کا تقاضا کیوں تھا؟ کیونکہ ایک حجاب کا تصور ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک خیال کہ نہیں، عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ مردوں کے تھرو ہونا ہے، ठीक है, तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम के पास गए। हालांकि पॉसिबिलिटी थी कि जो औरत गिरी है तो उनको ज्यादा तकलीफ हो सकती है, लेकिन एक जो तबीयत के अंदर एक हिजाब आ जाए ना, तो फिर इंसान का हर हर स्टेप जो होता है वो एहतियात के साथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अबू तलहा के बयान के, अच्छा जाहिर है किसी काफिर के सामने ये बात कहेंगे तो कहेंगे, तो वो तो ये कहेगा ना कि जी मुसलमान तो ऐसे ही बेरहम होते हैं, औरतों का ख्याल नहीं होता उनको। ठीक है, लेकिन वो तो इस हिजाब के तस्वर को समझ ही नहीं सकता ना, वो तो इस फीलिंग को समझ ही नहीं सकता, इस वजह से वो अपने तौर पर इस बात को देखेगा। लेकिन हमें तो ऐसे नहीं देखना चाहिए ना, हम भी काफिरों की तरह सोचना शुरू हो जाए तो फिर हम भी शायद ऐसे ही कहें कहें नहीं, उनको तो पहले औरत के पास जाना चाहिए था। तो अर्ज किया कि अल्लाह ताला मुझे आपसे पर कुर्बान कर दे, आपको कोई चोट तो नहीं आई? आपसे फरमाया कि नहीं, तुम औरत की खबर लो। ठीक है, अब देखें शोहर का मामला ये है कि शोहर ने उनको अपनी बीवी के सामने भेजा, के पास भेजा, तो अब ये अलग बात हो गई। तो वो फिर अबू तलहा ने पहले तो अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अबू तलहा ने पहले तो अपना चेहरा कपड़े में छुपाया। ठीक है, पहले अपने आप को छुपाया, इसलिए कि वो गिरी थी तो हो सकता है उनका कुछ पर्दा जो है वो एक्सपोज हो गया। फिर हजरत सफिया के पास पहुंचे और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया तो वो खड़ी हो गई। ठीक है, अंदाजे से पहुंचे जाहिर है, क्योंकि अपना तो चेहरा छुपा लिया था। फिर हजरत सफिया के पास पहुंचे, उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया तो वो खड़ी हो गई। फिर इसी तरह पर्दे में मस्तूर उनको उनकी सवारी पर सवार किया। इस वाकई में भी जो एक हादसे की सूरत में अचानक पेश आया, सहाबे कराम और अज़वाज मुतहरात का पर्दे के मामले में इतना एहतमाम, इसकी बड़ी अहमियत का शाहिद है। जामे तिरमिजी में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा खरजतिल मरअतु तशरफहा शैतानु, के औरत जब घर से निकलती है तो शैतान उसको ताक लेता है, यानी शैतान उसको फिर अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है लोगों को, मर्दों को गुमराह करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास खत्म करते हैं, टाइम हमारा पूरा हो गया है। मजीद कोई सवाल अगर होंगे तो इंशाल्लाह अगली क्लास में ही इसको एड्रेस करेंगे।